नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 4 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री जॉर्डन जाएंगे। ये यात्रा किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन की ये पहली यात्रा है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये यात्रा हो रही है। प्रधानमंत्री मंगलवार को इथियोपिया के लिए रवाना होंगे। इथियोपिया की अपनी पहली यात्रा के दौरान श्री मोदी इथियोपिया के प्रधानमंत्री से भेंट करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ओमान पहुंचेंगे। श्री मोदी ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि भारत ने सदैव ही बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव का समर्थन किया है। केंद्र ने कहा है कि भारत ने कभी भी अपनी धरती को बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत को आशा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए आंतरिक कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड ने वरिष्ठ पार्टी नेता नितिन नवीन को तत्काल प्रभाव से पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नितिन नवीन वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि नितिन नवीन ने पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वित्त राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने आज लखनऊ में इसकी घोषणा की। अध्यक्ष के अलावा पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का भी चुनाव किया है। भाजपा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि संसद में चुनावी सुधारों पर व्यापक चर्चा हो चुकी है। श्री पात्रा ने दावा किया कि कांग्रेस भारत के संवैधानिक निकायों का अपमान कर रही है।
कोर्ट में केस नहीं, इलेक्शन कमीशन में एक भी किसी बूथ के ऊपर कंप्लेंट नहीं, मगर आप रैली कर रहे हैं। यही दिखाता है कि हाथ में वास्तविकता नहीं है, मगर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की चेष्टा आप लोग कर रहे हैं। लाख कोशिश कांग्रेस पार्टी भटकाने की कर ले और हमारी संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित और बदनाम करने के लिए कर ले, मगर विदेश भी जानता है कि भारतवर्ष का लोकतंत्र एक बहुत सघन लोकतंत्र है और इसे हिलाया नहीं जा सकता है।
इस बीच कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में चुनावी मुद्दों पर रैली की। रेलवे ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युतीकरण का 99% से अधिक कार्य पूरा कर लिया है। मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2025 के बीच 33,000 किलोमीटर से अधिक मार्गों का विद्युतीकरण किया गया है। ये लगभग जर्मनी के पूरे रेलवे नेटवर्क के बराबर है। यह स्वच्छ और कुशल रेल परिवहन के विस्तार में देश की क्षमता का प्रतीक है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडी बीच पर आज सुबह यहूदियों की छुट्टियों के दौरान बंदूकधारियों द्वारा गोलीबारी में 12 लोग मारे गए और 29 अन्य घायल हो गए। इसमें एक बंदूकधारी भी मारा गया। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने हमले को चौंकाने और परेशान करने वाला बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए भयानक आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। भारत ने चेन्नई में शीर्ष वरीयता प्राप्त हांगकांग को 3-0 से हराकर पहला स्क्वाश विश्वकप अपने नाम किया। जोशना चिनप्पा ने काईली को, अभय सिंह ने क्वानलाव को और अनहत सिंह ने हो थोमैतो ज़ेलॉक को हराकर भारत को जीत दिलाई। दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पाकिस्तान को 241 रन का लक्ष्य दिया था। कनिष्क चौहान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 118 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में 2 विकेट पर 97 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।